अध्याय एक भाषा। भाषा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनसे भाव विभज्जन का काम लिया जाता है। इस दृष्टि से पशु पक्षियों की बोली भी भाषा है, इंगित भी भाषा है, सड़क की लाल हरी बत्ती भी भाषा है और मनुष्य जो बोलता है वह भी भाषा है। भाषा शब्द का प्रयोग पशुओं या पक्षियों की बोली के लिए भी किया जाता है, जैसे बंदरों की भाषा, कुत्तों की भाषा, तोता मैना की भाषा आदि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभुशुंडी और गरुण के वार्तालाप के प्रसंग में लिखा है, समुझे खग खगही के भाषा मानस। यहाँ खग भाषा अर्थात पक्षी की भाषा का स्पष्ट उल्लेख है। पशु पक्षियों की भाषा का अध्ययन करने वालों का कहना है कि उनकी भाषा में भी भाव और अभिप्राय के अनुसार भेद हो जाया करता है। प्रसन्नता के समय उनकी भाषा वही नहीं रहती जो कष्ट या क्रोध के समय। कुत्ते या बिल्ली की बोली ध्यान से सुनने पर हम भी देखते हैं कि अवसर के अनुसार अर्थात मनोदशा के अनुसार उनकी ध्वनि में अंतर हुआ करता है। ख, अपना अभिप्राय व्यक्त करने के लिए आँख, हाथ, सिर आदि का संचालन भी भाषा के अंतर्गत आता है। इसे आंगिक या इंगित भाषा कहते हैं। आँखों से किसी को चलने का इशारा करना, किसी को बैठने को कहना, किसी को जाने का निर्देश देना, किसी के सामने दीनता दिखाना, किसी पर क्रोध प्रकट करना, किसी से प्रेम जताना आदि दैनिक व्यापार हैं। बिहारी के नायक नायिका आँख की भाषा में ही अपने सारे भाव एक दूसरे से प्रकट कर देते हैं। कहट नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। सहमति और असहमति, स्वीकृति और अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए सिर हिलाना साधारण बात है। इसी तरह हाथ हिलाकर हम किसी को बुलाते हैं, किसी को दूर हटने को कहते हैं, किसी को कुछ करने से मना करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से आरजू मिन्नत करते हैं, किसी को मारने का इशारा करते हैं। आंगिक या इंगित भाषा का प्रयोग केवल गूंगे ही नहीं करते, वाणी संपन्न मनुष्य भी करते हैं। अंतर यह है कि गूंगों के लिए वह अनिवार्य है और वाणी संपन्न मनुष्यों के लिए वाचिक भाषा की पूरक। किसी को डांटते समय केवल वाणी के प्रयोग से ही संतोष नहीं होता, हम हाथ और आँख के संचालन से भी क्रोध व्यक्त करते हैं। व्याख्यान देते समय मेज पर हाथ पटक कर या जमीन पर पैर पटक कर हम अपने वक्तव्य को अधिक सबल रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत बार आंगिक भाषा के बिना वाचिक भाषा अपूर्ण और असमर्थ से प्रतीत होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह वाचिक भाषा का स्थान ग्रहण करने के योग्य है। वाचिक भाषा की पूर्णता इंगित से संभव है ही नहीं। ग, अर्थबोध के अनुसार मनुष्य कई प्रकार के चिन्ह भी काम में लाता है। स्काउट, नाविक या सैनिक झंडे की सहायता से अपना संदेश एक दूसरे तक भेजते हैं। झंडे की भाषा का इतना विकास हो चुका है कि दो दूरस्थ पहाड़ों पर खड़े सैनिक या दो दूरस्थ जहाज़ों पर खड़े नौसैनिक परस्पर भली भांति बातें कर लेते हैं। गार्ड अपने लाल हरी झंडियों की सहायता से ड्राइवर को गाड़ी रोकने और चलने का आदेश दूर से ही दे देता है। सड़क की लाल हरी बत्तियां रुकने और जाने का निर्देश करती हैं। तार की टकुट्रा ध्वनियां मोर्स कोड चिन्ह भाषा के अंतर्गत आती है। यातायात का नियंत्रण करने वाले सिपाही का हाथ उठाना इसी कोटि की भाषा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भावाभिजन या अर्थबोध के ये सभी साधन गौण और स्थूल रूप में ही भाषा के सीमा में आते हैं। घ, भाषा का मुख्य प्रयोग ध्वनि संकेतों की सहायता से भावों या विचारों की अभिव्यंजना के लिए ही होना चाहिए। अभिव्यंजना के उपर्युक्त साधनों में अपूर्णता और अस्पष्टता रहती है। ध्वनि संकेत की भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो वक्तव्य को पूर्णता और स्पष्टता से संप्रेषित कर सकती है। भाषा विज्ञान में भाषा के इसी रूप का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान का संबंध पशुओं की बोली या चिन्ह भाषा से नहीं है। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी। एक प्रकार से इस धातु के अर्थ में ही भाषा का लक्षण विद्यमान है। व्यक्तवाणी का अर्थ है स्पष्ट और परिपूर्ण अभिव्यंजना, और वह उच्चरित या वाचिक भाषा से ही संभव है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों के बोधक अनंत ध्वनि संकेत हैं। इसीलिए भाषा मनुष्य की वाचिक भाषा के लिए ही संगत है, भावबोधन के अन्य माध्यमों के लिए नहीं। और उनके लिए यदि भाषा का प्रयोग होता है तो गौण अर्थ में ही। भाषा की परिभाषा। किसी वस्तु की परिभाषा देना बड़ा कठिन कार्य है। परिभाषा बनाते समय तीन दोषों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, और वे हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। न्याय शास्त्र के अनुसार शुद्ध लक्षण परिभाषा वह है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से शून्य हो। तदेव ही लक्षणम यद व्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषित्रय शून्यम। अव्याप्ति जितने पर परिभाषा लागू होनी चाहिए उतने पर लागू न हो। जैसे कोई मनुष्य की भाषा बनाया नहीं कि मनुष्य उसे कहते हैं जिसने भाषा विज्ञान पढ़ा हो, तो इस परिभाषा में अव्याप्ति है, क्योंकि करोड़ों मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने भाषा विज्ञान नहीं पढ़ा है। अतिव्याप्ति का अर्थ है कि जितने पर परिभाषा लागू होने चाहिए उससे अधिक पर लागू हो जाए। जैसे कोई कहे कि मनुष्य उसे कहते हैं जिसके दो नेत्र हों, तो इस परिभाषा में अतिव्याप्ति आ गई, क्योंकि पशु पक्षियों के भी दो नेत्र होते हैं, अतः वे भी मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन जाएंगे। असंभव दोष तब होता है जब परिभाषा पर किस पर लागू हो ही नहीं। जैसे यह कहना कि मनुष्य वह है जिसके 100 पैर हों, 100 पैरों के मनुष्य का होना संभव नहीं, इसलिए इस परिभाषा में असंभव दोष है। इन तीनों दोषों से बचकर परिभाषा बनाना बहुत कठिन होता है। एक दोष से बचने के प्रयास में दूसरा दोष आ जाता है, इसीलिए परिनिष्ठित लक्षण या परिभाषा बहुत श्रम, अवधान और ज्ञान से ही बन पाती है। भाषा की परिभाषा भी इन कठिनाइयों का अपवाद नहीं है। भाषा विज्ञानियों ने भाषा की अनेक परिभाषाएँ दी हैं और आलोचना करने पर भी सर्वथा निर्दोष नहीं सिद्ध हो पाती। किसी में कोई त्रुटि दिखती है तो किसी में कोई। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव के अतिरिक्त और भी अनेक दोष हैं जिन पर परिभाषा बनाते समय ध्यान रखना होता है। उदाहरणार्थ, परिभाषा में अनावश्यक शब्द का प्रयोग, अर्थात ऐसा शब्द दे देना जिससे कोई लाभ न हो। इसी तरह यदि परिभाषा ऐसी बन गई जिससे प्रतिपाद्य स्पष्ट न हो, तो इसे भी दोष कहेंगे। इस संदर्भ में आधुनिक भाषा विज्ञानियों द्वारा दी गई कतिपय परिभाषाओं को देख लेना उपयोगी होगा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा के संज्ञा दी जाती है। और तो यस पर्सन। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा के दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वांद्रेय। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। पीडी गुणे। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना। अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार सेन। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करते हैं। ब्लॉक एंड ट्रेगर। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। स्त्रुतेवा। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में किसी न किसी प्रकार की अपूर्णता प्रतीत होती है। जिससे भाषा का निर्दुष्ट लक्षण हमारे सामने नहीं आता। स्वीट एंड स्पर्शन के लक्षण में मूलतः एक ही बात दोहराई गई है कि भाषा ध्वन्यात्मक होती है एवं विचारों को प्रकट करने का काम करती है। वांद्रे भाषा के प्रतीकात्मकता पर बल देते हैं। गुणे की परिभाषा में स्वीट की परिभाषा की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। बाबूराम सक्सेना तथा सुकुमार सेन भी अन्य परिभाषाओं के तुलना में बहुत सफल परिभाषा नहीं बना सके। ब्लॉक, ट्रेगर तथा स्त्रुतेवा ने भी भाषा के अंतर्निहित नियमबद्धता को अपनी परिभाषा में समाहित करने का प्रयत्न किया है, किंतु रूढ़ी की बात फिर भी रह जाती है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ परिभाषाओं में अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अत्यधिक विस्तार भी दिखाई देता है। भाषा की सर्वांगीण एवं संक्षिप्त परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से बनाई जा सकती है। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। इस परिभाषा में चार बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, भाषा उच्चरित संकेत है। दूसरा, वह यादृच्छिक है। तीसरा, वह रूढ़ है। चौथा, वह एक प्रकार की प्रणाली या व्यवस्था है। इन चार बिंदुओं को जरा स्पष्टता से समझने की कोशिश करें। पहला, भाषा को उच्चरित संकेत कहकर उसकी ऐसी विशेषता पर बल दिया गया है जिसके द्वारा वह भाव विचारों या भावों की अभिव्यक्ति के अन्य साधनों जैसे इंगित आदि से अलग हो जाती है। इंगित में भी विचार विनिमय की क्षमता है, किंतु वह उच्चरित संकेत नहीं है। इसी तरह झंडी या लाल हरी रोशनी से अर्थ तो अभिव्यक्त हो जाता है, किंतु उच्चरित संकेत नहीं होने के कारण वह भी भाषा के कोटि में नहीं आ सकती। दूसरा, भाषा यादृच्छिक संकेत है, अर्थात शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। उदाहरणार्थ, पशु विशेष को कुत्ता या घोड़ा क्यों कहते हैं, यह कहना असंभव है। यदि इन ध्वनियों और इनसे बोधित होने वाले अर्थों में कोई नियत या युक्तिपूर्ण संबंध होता तो सभी भाषाओं में इन वस्तुओं के लिए यही ध्वनियाँ प्रयुक्त होती, किंतु विभिन्न भाषाओं में इसके वाचक विभिन्न शब्द हैं। उदाहरणार्थ, संस्कृत में श्वान, हिंदी में कुत्ता, अंग्रेजी में डॉग, रूसी में सबाका, फ्रांसीसी में श्यां, जर्मन में हुंद। संस्कृत में अश्व, हिंदी में घोड़ा, अंग्रेजी में हॉर्स, रूसी में लोशच, फ्रांसीसी में शवाल, जर्मन में फेवर्द। इन पशुओं और उनकी वाचक ध्वनियों से कोई संबंध नहीं है। ये ध्वनियाँ मनमाने ढंग से गढ़ ली गई, समाज ने इन्हें स्वीकार कर लिया और ये उन पशुओं का बोधक बन गई, तो ध्वनि संकेत यदृच्छा से प्रसूत हैं। तीसरा, भाषा के ध्वनि संकेत ऋण अर्थ विशेष में प्रसिद्ध होते हैं। यह प्रसिद्धि परंपरा से प्राप्त होती है। पहले से लोग वस्तु विशेष के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। उसे सुनकर आज जन्म लेने वाला बच्चा उस वस्तु के लिए वृक्ष का प्रयोग करने लगता है। वह यह भी नहीं समझता, न समझने की कोशिश करता है और न कोशिश करने का सफल होगा कि उसे वृक्ष क्यों कहा गया। तर्कहीन प्रयोग प्रवाह ही रूढ़ी है। किसी भी भाषा में जितने ध्वनि संकेत होते हैं वे प्रायः रूढ़ ही होते हैं। चौथा, भाषा में अंतर्निहित नियमबद्धता होती है, इसीलिए उसे प्रणाली या व्यवस्था कहा गया है। शब्द और अर्थ में यादृच्छा संबंध होता है, वह रूढ़ी या परंपरा से प्राप्त होता है, किंतु भाषा के सफल प्रयोग के लिए उसके अंतर्निहित नियमों का पालन भी अनिवार्य होता है। जैसे इन वाक्यों को ले, को लड़का पढ़ता है, को लड़की पढ़ती है। अब यदि कोई लड़का पढ़ती है कहे तो व्याकरण या भाषा विज्ञान को न जानने वाला हिंदी भाषा भाषी भी इसे अशुद्ध वाक्य बताएगा। इतना ही नहीं, कई भाषाओं में तो नियम के अज्ञान से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे अंग्रेजी का यह वाक्य लें, राम बिट्स श्याम। अंग्रेजी के व्यवस्था के अनुसार कर्ता पहले आता है, क्रिया उसके बाद और फिर कर्म। यदि किसी वाक्य में कोई गलती है से श्याम बिट्स राम बोले क्योंकि उसकी अपनी भाषा में शब्द क्रम का महत्व नहीं है, तो शब्द अर्थ का अनर्थ होगा ही। यह नियमबद्धता केवल वाक्य के स्तर पर ही नहीं होती बल्कि शब्दों की संरचना में भी होती है। प्रत्येक भाषा की नियम व्यवस्था भी अलग अलग होती है और तत्त्व भाषा का प्रयोग उसी के नियमों के आधार पर होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भाषा में नियमबद्धता हो ही ना। भाषा के तीन पक्ष। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भाषा विज्ञानी द सोसुर ने भाषा के तीन पक्ष माने हैं, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक, तीसरा सामान्य या सर्वव्यापक। पहला वैयक्तिक पक्ष को उसने पारोल कहा है। पारोल के लिए अंग्रेजी में स्पीच शब्द का प्रयोग होता है, हिंदी में इसका कोई समानार्थक शब्द नहीं है। इसके लिए वाणी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। वाणी का प्रयोग व्यक्ति करता है, इसीलिए भाषा की उत्पत्ति व्यक्ति से ही होती है। धनन अर्थात ध्वनि के उच्चारण की क्षमता उसी में रहती है। व्यक्ति समाज से भाषा ग्रहण करता है, यह ठीक है, पर समाज का अंग होने के कारण भाषा के सामाजिक रूप का वह स्वयं निर्माता भी होता है और भाषा के प्रसार में सहायक भी बनता है। भाषा और समाज में आदान प्रदान क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। व्यक्ति यदि समाज से भाषा लेता है तो समाज को अपनी ओर से कुछ देता भी है। वह भाषा को सर्वथा बदल नहीं सकता, मगर उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर तो कर ही सकता है। यही हेर फेर या परिवर्तन जब बहुत अधिक और व्यापक हो जाता है तो भाषा बदल जाती है। इसका विस्तृत विवेचन आगे होगा। व्यक्तिगत भाषा या वाणी के दो अनिवार्य पहलू हैं, बोध और अभिव्यंजन। बोध आदान का साधक है, अभिव्यंजन प्रदान का। बोध की सहायता से भाषा ग्रहण की जाती है और अभिव्यंजन के द्वारा वह फिर समाज को दी जाती है। बोध और अभिव्यंजन का यह क्रम लगातार चलता रहता है, क्योंकि जो भी वक्ता है वही दूसरे क्षण श्रोता बन जाता है और जो भी अभी श्रोता है वही दूसरे क्षण वक्ता। दो आदमियों के बीच में बारी बारी से दोनों व्यक्ति वक्ता और श्रोता बनते चलते हैं। वक्ता के रूप में वे अभिव्यंजन के आधार बनते हैं और श्रोता के रूप में बोध के। दूसरा, चूंकि भाषा का उद्देश्य और उपयोग सामाजिक है, अतः व्यक्ति की सीमा पार कर उसे समाज के विस्तृत परिवेश में आना पड़ता है। वस्तुतः भाषा का सामाजिक रूप ही सबसे महत्व का होता है। भाषा के सामाजिक या सामुदायिक रूप को द सोसुर ने लॉग कहा है। अंग्रेजी में इसके लिए टंग का प्रयोग होता है। समुदाय विशेष में प्रचलित और व्यवहारित भाषा को ही लॉग कहते हैं। इस दृष्टि से हिंदी, मंगला, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, रूसी आदि लॉग है, क्योंकि इनका रूप सामुदायिक है। एक खास समुदाय के लोग इन भाषाओं को बोलते और समझते हैं। किसी भाषिक समुदाय के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। भाषिक समुदाय में 10 आदमी भी हो सकते हैं और 10 करोड़ भी। व्यक्ति किसी भाषिक समुदाय का अंग हुआ करता है, अतः न तो वह उस भाषा को उत्पन्न कर सकता है और न सर्वथा परिवर्तित। हिंदी या अंग्रेजी को किसी व्यक्ति ने उत्पन्न नहीं किया और न किसी व्यक्ति ने इतना सामर्थ्य है कि उसे बिल्कुल परिवर्तित कर दे। एक दो शब्द दे देने की बात दूसरी है। वाणी का जो वैयक्तिक पक्ष है उसमें मुख्यतः ध्वनन आता है। श्रवण का प्रश्न भाषा के सामुदायिक रूप में ही उत्पन्न होता है। अकेला होने पर व्यक्ति बोल सकता है, किंतु सुनना तभी संभव है जब उसके अतिरिक्त वहाँ कोई दूसरा भी हो। इसलिए भाषा के सामाजिक पक्ष का विचार करते समय ध्वनन और श्रवण पर विचार करना आवश्यक है। बोलने के क्रम में ध्वनन वाले पक्ष की बड़ी सुंदर व्याख्या पाणिनीय शिक्षा में मिलती है। आत्मा बुद्धया समेर्थ्यारणम मनो यंगते विवक्षया, मन कायाग्नि महंति स्र प्रेरयति मारुतम, मारुत स्तुरसि चरणवंदम जानसीश्वरम। सोदीर्णो मूर्धन्याभियतो वक्तमाद्यपः मारुतः, वर्णांजन्ते तेषां विवाग पंचधा संप्रितः। पाणिनि शिक्षा 6-9। बुद्धि के साथ आत्मा अर्थों को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है, जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। प्रेरित वायु फेफड़ों में चलती हुई कोमल ध्वनि को उत्पन्न करती है, फिर बाहर की ओर जाकर और मुख के उप परिभाग में अवरुद्ध होकर वह वायुमुख में पहुंचती है और पंचदा विभक्त भक्तियों को उत्पन्न करती है। मानसिक प्रत्यय ध्वनि के रूप में कैसे अभिव्यक्त होता है यह इन कारिकाओं में स्पष्टतः प्रतिपादित है। आत्मा से व्यक्ति का चेतना पक्ष, बुद्धि से ज्ञान पक्ष, मन से प्रेरणा पक्ष, वायु से संचरण निर्गमन और अवरोध से शारीरिक पक्ष निर्दिष्ट है। बिना चेतना के भाषा असंभव है। अचेतन न तो कुछ समझ सकता है और न भूल सकता है। दीवार नहीं भूल पाती क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, पर चेतना होने पर भी बुद्धि के बिना काम नहीं चल सकता। बैल में चेतना है पर बुद्धि नहीं, अतः वह भाषाहीन है। मनुष्य में चेतना के साथ बुद्धि का भी योग है, इसीलिए वह भाषा के प्रयोग में समर्थ है। किंतु मनुष्य भी जब तक चाहता नहीं तब तक नहीं बोलता। यह चाहना मन का व्यापार है, और यदि बोलना चाहकर भी कोई श्वास वायु को बाहर आने का अवसर न दे तो भी वाणी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए वाणी की उत्पत्ति के लिए आत्मा, बुद्धि, मन और वायु का आवश्यक माना गया है। जिन वस्तुओं या जीवों में इन चारों पक्षों में से एक या अनेक का भाव है वे वाणी के वैभव से रहित हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो इन चारों पक्षों में पूर्ण समृद्ध है, इसीलिए भाषा के दृष्टि से उसका स्थान उच्चतम है। एक व्यक्ति का मानसिक प्रत्यय दूसरे व्यक्ति के मन में ठीक उसी प्रकार कैसा उत्पन्न होता है यह अग्रग्रांकित चित्र में देखा जा सकता है। वक्ता के मन में पहले प्रत्यय उत्पन्न होता है, फिर वह प्रत्यय शाब्द बिंब का रूप ग्रहण करता है, बाद में वह शाब्द बिंब ध्वनन के रूप में परिणत होता है, फिर श्रवण के द्वारा ध्वनन ध्वनिक बिंब का रूप ग्रहण कर श्रोता के मन में प्रत्यय उत्पन्न करता है। इस तरह प्रत्यय, फिर शाब्द बिंब, फिर ध्वनन, उसके बाद ध्वनि बिंब, प्रत्यय का क्रम श्रोता और वक्ता में अनवरत चलता रहता है, जिसमें वक्ता का प्रत्यय श्रोता के प्रत्यय में रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए दोनों छोरों पर प्रत्यय प्रतिष्ठित है, पहला प्रत्यय वक्ता का और अंतिम श्रोता का। वक्ता और श्रोता के प्रत्यय में समानाधिकरण ला देना अर्थात उन्हें समान मनोवैज्ञानिक तल पर ले आने से ही भाषा की उपयोगिता है। वक्ता का कुछ अभिप्राय कुछ और हो तथा श्रोता कुछ और समझे तो भाषा का प्रयोग निरर्थक होगा। वक्ता जो कहे श्रोता वही समझे, यही भाषा का समानाधिकरण यानी समान अधिकरण आधार स्तर पर होना है। उपर्युक्त प्रत्यय बिंब ध्वनन आदि में एक एक का अध्ययन विभिन्न विज्ञानों का विषय है, जिनकी चर्चा आगे होगी। उदाहरणार्थ प्रत्यय और बिंब का संबंध मनोविज्ञान से है और ध्वनन का शरीर विज्ञान व भौतिक विज्ञान से। तीसरा, भाषा के सामाजिक पक्ष के बाद वह सामान्य पक्ष आता है, जिसके लिए दसोसु ने लोगोस शब्द का व्यवहार किया है। लोगोस से अभिव्यंजना के सामान्य माध्यम का अर्थात मनुष्य मात्र की भाषा का बोध होता है। इसमें हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, रूसी आदि का भेद नहीं रहता। भाषा यहाँ पहुंचकर संप्रेषण का सामान्य साधन बन जाती है और उससे ध्वनन, श्रवण आदि मानव भाषा संबंधी जितनी जटिलताएं प्रक्रियाएं हैं उन सब का बोध होता है। भाषा का यह वेद रहित सार्वभौम रूप है, इसे अभिभाषा अधिभाषा कह सकते हैं। उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार भाषा व्यक्ति से उत्पन्न होकर समाज में आगे बढ़ती हुई सार्वभौम बन जाती है।